ണം നമസ്കൃത്യ നരൻ ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേ. ധൃതരാഷ്ട്ര കോ കിത്നാ ജ്ഞാൻ ഥാ, കൽ കിത്നാ രാജനീതി കാ ഉപദേശ് ദിയ, വ്യവഹാര കാ ഉപദേശ് ദിയ. समझते थे अपने लोग तो केवल ये पुत्र के मुंह में ही रहा और ऐसी बोलता था. बहुत अंदर से इसको ज्ञान था. वो ज्ञान मुंह के अंदर सब बराबर हो गया. जैसे खूब बढ़िया भोजन है परंतु वो मिट्टी में मिला दे तो सब बढ़िया भोजन किरकिर हो जाता है. ऐसे ही धृतराष्ट्र का ज्ञान किरकिर हो गया. धृतराष्ट्र कहता अब वन में जाऊंगा तो सब प्रकार का ज्ञान देकर वो अपने महल में आया और वहां गांधारी देवी ने पूछा कि नाथ आप तो कहते थे वन में चलना है, व्यास जी ने भी आज्ञा दे दी, युधिष्ठिर जी ने भी अनुमति दे दी, अब आप किस दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं? इतना कल पाठ हो गया, कथा हो गई. धृतराष्ट्र ने कहा कि गांधारी अब वन में चलने में अधिक विलंब नहीं है. मैं चाहता हूं कि प्रजा को बुलाकर अपने मरे हुए पुत्रों के उद्देश्य से कुछ धनदान कर दूं. ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा इसलिए किया जाता है कि मरे हुए के पीछे दान पुण्य करने पर उसकी स्मृति समाप्त हो जाती है, उनकी याद कम होती, शोक कम होता है. इसलिए मरे हुए के पीछे दान करने का शास्त्र में नियम है. यूं कहकर धृतराष्ट्र ने धर्मराज युधिष्ठिर के पास अपना विचार कहला भेजा. युधिष्ठिर ने उनकी आज्ञा के अनुसार सब सामग्री जुटा दी. राजा का संदेश पाकर कुरु जांगल देश के ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वहां इकट्ठे हो गए. तदनंतर महाराज धृतराष्ट्र अंतपुर से बाहर निकले और वहां नगर तथा प्रांत के प्रजा को उपस्थित देखकर बोले, सज्जनों, आप और कौरव चिरकाल से एक साथ रहते आए हैं. कौरवों तथा आप में परस्पर घनिष्ठ स्नेह स्थापित हो चुका है. आप दोनों सदा एक दूसरे के हित में परायण रहते हैं. दोनों कौन? प्रजा और कौरव. इस समय मैं आप लोगों से कुछ निवेदन करना चाहता हूं. आप उसे बिना विचारे स्वीकार करने की कृपा करें. मैंने अब गांधारी के साथ वन में जाने का निश्चय कर लिया है और इसके लिए मुझे महर्षि वेदव्यास और कुंती नंदन राजा युधिष्ठिर की अनुमति मिल गई है. अब आप लोग मुझे वन में जाने की आज्ञा दें. इसमें आप कोई अन्यथा विचार न करें. हमारे साथ आप लोगों का जो ये प्रेम संबंध सदा से चला आ रहा है, ऐसा संबंध मेरी समझ में दूसरे राजाओं के साथ वहां की प्रजा का शायद ही हो. अब बुढ़ापे ने मुझे और गांधारी को बहुत थका दिया है. इधर उपवास करने के कारण हम दोनों अधिक दुर्बल हो गए हैं. युधिष्ठिर के राज्य में मुझे बहुत आराम मिला है. मैं समझता हूं दुर्योधन के राज्य में भी कभी इतना सुख मुझे नहीं मिला. एक तो मैं जन्म का अंधा हूं, दूसरे बुढ़ापे ने मुझ पर अधिकार जमा लिया है और इस पर भी मेरे सौसों बेटे मारे गए हैं, उनका शोक भी दूर नहीं होता है. ऐसी दशा में वन में जाने के सिवा मेरे कल्याण का और कोई उपाय दिख नहीं रहा है. आप लोग मुझे जाने की अनुमति दें। धृतराष्ट्र की ये बातें सुनकर वहां उपस्थित हुए कुरु जंगल निवासी सभी मनुष्यों के आंखों में आंसुओं की एक अनवरत धारा बह पड़ी, फूट फूट कर लोग रोने लगे। उन्हें शोक मग्न होकर कुछ भी उत्तर देते न देख धृतराष्ट्र फिर कहने लगे, भाइयों, महाराज शांतनु ने इस पृथ्वी का यथावत पालन किया था, उनके बाद भीष्म के द्वारा सुरक्षित राजा विचित्रवीर्य के अधिकार में आई। उन्होंने जिस प्रकार इस राज्य की रक्षा की वो आप लोगों से छिपी नहीं है। तदनंतर मेरे भाई पांडु ने इसका विधिवत पालन किया, इसे भी आप जानते हैं। अपने प्रजापालन रूपी गुण के कारण वे सभी के प्रिय बने। पांडु के बाद मैंने आप लोगों की भली या बुरी जैसी बन सकी सेवा की, लेकिन मैं ये मानता हूं उस समय मुझसे अपराध भी हुए हैं, आप लोग मुझे क्षमा कीजिएगा। दुर्योधन ने जब अकंटक राज्य का उपभोग किया था उस समय उसने भी आप लोगों का कुछ बिगाड़ तो नहीं किया था, जो किया था केवल पांडवों के साथ अन्याय किया था, प्रजा में उसने कोई किसी को कष्ट नहीं दिया, किंतु उस दुर्बुद्धि के अपराध और अभिमान के कारण तथा मेरे किए हुए अन्याय के कारण असंख्य राजाओं का ये महान संहार हो गया। उस अवसर पर मुझसे भला या बुरा जो कुछ हुआ हो उसे आप लोग भूल जाइए, इस बात के लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं। मैं बूढ़ा हूं, अंधा हूं और मैं दुखी भी हूं, और अपने प्राचीन राजाओं का वंशज हूं, सब समझ करके आप क्षमा करें। यह बिचारी तपस्विनी गांधारी भी मेरे साथ आप लोगों से क्षमा याचना करती है। हम दोनों बूढ़े, मैं अंधा, इसने अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर अंधी का ही रूप बनाया। अपने पुत्रों के मारे जाने के कारण हम दोनों दुख में डूबे हुए, ऐसा जानकर आपका हृदय जरूर क्षमाशील बनेगा और हमें वन में जाने की आज्ञा देगा। आप लोगों का कल्याण हो, हम दोनों आपकी शरण में हैं। ये कुरुकुल भूषण कुंती नंदन युधिष्ठिर आप लोगों के राजा हैं, अच्छे या बुरे सभी समय में आप सब लोग इन पर कृपा दृष्टि रखें। लोकपालों के समान महान तेजस्वी तथा धर्म और अर्थ के मर्मज्ञ परम शूरवीर युधिष्ठिर के अनुज भीमसेन तथा इनके और भी भाई मंत्री जो राज्य का काम सब देखने वाले हैं, ऐसे राजा युधिष्ठिर कभी संकट में नहीं पड़ सकते, फिर भी आप लोग इनका पूरा ख्याल रखना। संपूर्ण जीव जगत के स्वामी भगवान ब्रह्मा के भांति ये महान तेजस्वी युधिष्ठिर आप लोगों का यथावत पालन करेंगे। मैं इन्हें धरोहर के रूप में आप लोगों के हाथ सौंपता हूं तथा आप लोगों को इनके हाथ में दे रहा हूं। आप लोग अत्यंत गुरु भक्त हैं, अतः मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। मेरे पुत्रों की बुद्धि चंचल थी, मेरे पुत्रों की बुद्धि में लोभ लालच और स्वेच्छाचारिता थी। उनके अपराधों के लिए मैं और गांधारी दोनों आप सभी से क्षमा की भीख मांगते हैं। धृतराष्ट्र के इस प्रकार कहने पर नगर और प्रांत के रहने वाले सभी लोग नेत्रों से आंसू बहाते हुए एक दूसरे का मुंह देखने लगे लेकिन किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। वैशंपायन कहते हैं, जन्मेजय कुरुराज की करुणा भरी बातें सुनकर वहां एकत्रित हुए सभी लोग दुपट्टों और हाथों से अपना मुंह ढांक ढांक कर रोने लगे। अपनी संतान को विदा करते समय पिता और माता को जितना क्लेश होता है उतना ही क्लेश कुरु जंगल निवासी मनुष्यों को हुआ। वे शोक से संतप्त हो उठे और अपने सूने हृदय में धृतराष्ट्र के प्रवास जन्य दुख को धारण करके अचेत हो गए। फिर धीरे धीरे उनके वियोग जनित क्लेश को कम करके उन सब ने आपस में बात करके अपनी राय जाहिर की। तदनंतर एक मत होकर उन्होंने राजा की बात का उत्तर देने का भार एक ब्राह्मण पर रखा। वे ब्राह्मण देवता बड़े सदाचारी, सबके माननीय, अर्थ ज्ञान में निपुण, उनका नाम था सांब। वे ऋग्वेद के विद्वान थे, निर्भय होकर बोलने वाले थे, बड़े बुद्धिमान थे, उनकी वाणी में बड़ी नम्रता थी, स्पष्टता थी, विनयशीलता थी। उन्होंने उठकर महाराज को आदर देते और सारी सभा को प्रसन्न करते हुए इस प्रकार कहना प्रारंभ किया, हे महाराज, यहां उपस्थित हुए सब लोगों ने अपना विचार प्रकट करने का सारा भार मुझ पर रखा है, इसलिए मैं ही इनकी बातों को आपकी सेवा में निवेदन करूंगा, आप सुनने की कृपा करें। महाराज, आप जो कुछ कहते हैं वो सब ठीक है, उसमें असत्य का लेश भी नहीं है। निस्संदेह हम में और आप में परस्पर घनिष्ठ स्नेह स्थापित हो चुका है। इस राजवंश में कोई भी ऐसा राजा नहीं हुआ जो प्रजा का पालन करते समय सबका प्रिय न रहा हो। आप लोग पिता और बड़े भाई के समान हमारा पालन करते आए हैं। राजा दुर्योधन ने हमारे साथ कोई अनुचित बर्ताव नहीं किया है। परम धर्मात्मा महर्षि व्यास जी आपको जैसी सलाह देते हैं वैसा कीजिए, क्योंकि वे हम सब लोगों के परम गुरु हैं। आपसे बिछड़ जाने के बाद हम बहुत दिनों तक दुख और शोक में डूबे रहेंगे। आपके सैकड़ों गुणों की याद हमें भूल नहीं सकती। महाराज शांतनु, राजा चित्रांगद और भीष्म द्वारा सुरक्षित आपके पिता विचित्र वीर ने जिस प्रकार इस पृथ्वी का पालन किया है तथा आपकी देखरेख में रहकर राजा पांडु ने जिस तरह इस राज्य की रक्षा की है, उसी प्रकार आपके पुत्र दुर्योधन ने भी हम लोगों का यथावत पालन किया है। उन्होंने रत्ती भर भी हमारी बुराई नहीं की है। हम लोग पिता के समान उन पर विश्वास करते थे और उनके राज्य में बड़े सुख से जीवन व्यतीत करते थे, ये बात आपसे छिपी नहीं है। बड़ी बड़ी दक्षिणा प्रदान करने वाले धर्मात्मा या राजा युधिष्ठिर तो प्राचीन काल के पुण्यात्मा राजर्षि कुरु और संवरण आदि के तथा राजा भरत के बर्ताव का अनुसरण करते हैं। इनमें से कोई छोटे से छोटा दोष भी नहीं दिखाई देता। इनके राज्य में आपके द्वारा सुरक्षित होकर हम सदा सुख से रहते आ रहे हैं। आपका या आपके पुत्र का कोई सूक्ष्म से सूक्ष्म अपराध भी हमारे देखने में नहीं आया। महाभारत में जो जाति भाइयों का संहार हुआ उसके विषय में जो आपने दुर्योधन के अपराध की चर्चा की है, इसके संबंध में मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूं। कौरवों के मारे जाने में न दुर्योधन का हाथ है न आपका हाथ है। कर्ण और शकुनी ने भी कुछ नहीं किया है। हमारी समझ में तो ये केवल दैव का विधान है, प्रारब्ध का खेल है, जिसे कोई टाल नहीं सकता है। कोई भी व्यक्ति पुरुषार्थ से दैव को नहीं मिटा सकता, मिटाना असंभव है। उस युद्ध में 18 अक्षौणी सेनाएं एकत्रित हुई थी, किंतु भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य आदि कौरव पक्ष के प्रधान योद्धाओं ने तथा सात्यकी धृष्टद्युम्न भीमसेन अर्जुन नकुल और सहदेव आदि पांडव पक्ष के वीरों ने 18 दिनों में सबका संहार कर डाला। ऐसा विकट संहार देवी शक्ति के बिना कदापि नहीं हो सकता। अतः उन राजाओं के वध में आपके पुत्र दुर्योधन, आपके सेवक महावीर कर्ण तथा शकुनी भी कारण नहीं है। उस समय जो हजारों राजा मौत के घाट उतारे गए वह सब देव की करतूत समझनी चाहिए। इस विषय में दूसरा कोई क्या कह सकता है। आप इस संपूर्ण जगत के स्वामी, इसलिए हम आपको सबसे श्रेष्ठ धर्मात्मा मानते हैं तथा आप और आपके पुत्र के साथ अपनी हार्दिक सहानुभूति प्रकट करते हैं। परमात्मा करे महाराज दुर्योधन ब्राह्मणों के आशीर्वाद से अपने सेवकों सहित वीर लोक को प्राप्त हों। आप भी धर्म में ऊंची स्थिति और पुण्य प्राप्त करें। आप संपूर्ण धर्मों को ठीक ठीक जानते हैं, इसलिए उत्तम व्रतों के अनुष्ठान में लग जाइए। पांडुनंदन राजा युधिष्ठिर पहले के राजाओं के द्वारा स्वीकृत किए हुए ब्राह्मणों के अग्रहार तथा परिवर की रक्षा करते रहे। अग्रहार है माने दान में दिए हुए गांव, और परिवर है माने पुरस्कार में दिए हुए गांव। दान अलग होता है, पुरस्कार अलग होता है। महाराज युधिष्ठिर दीर्घदर्शी कोमल स्वभाव वाले और जितेंद्रिय हैं। इनके मंत्री उच्च विचार के हैं। इनका हृदय बड़ा विशाल है। ये शत्रुओं पर भी दया करने वाले और परम पवित्र हैं। बुद्धिमान होने पर भी ये सबके साथ सरलता का व्यवहार करते हैं और हम लोगों का सदा पुत्रवत पालन करते हैं। ये पांचों भाई बड़े पराक्रमी महात्मा, धर्मात्मा, पूर्वासियों के परम हितेशी कुंती, द्रौपदी, उलूपी, सुभद्रा भी कभी प्रजा के प्रतिकूल व्यवहार नहीं करेंगी। आपका प्रजा के साथ जो स्नेह था उसे युधिष्ठिर ने और भी बढ़ा दिया है। नगर और प्रांत के लोग कभी उनकी अवहेलना नहीं कर सकते। इसलिए महाराज आप युधिष्ठिर के विषय की चिंता को छोड़ दीजिए और अपने धार्मिक कार्यों के अनुष्ठान में लग जाइए। आपको समस्त प्रजा का हृदय से नमस्कार है। सांब के धर्मानुकूल और गुणयुक्त वचन सुनकर समस्त प्रजा उन्हें साधुवाद देने लगी तथा सब ने उनकी बात का अनुमोदन किया। धृतराष्ट्र ने भी बारंबार सांब के वचनों की सराहना की और सब लोगों से सम्मानित होकर धीरे धीरे सबको विदा कर दिया। तत्पश्चात हाथ जोड़कर उन ब्राह्मण देवता का सत्कार किया और गांधारी के साथ अपने महल में चले गए। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन तदनंतर रात बीत गई, सवेरा हुआ। अंबिकानंदन राजा धृतराष्ट्र ने विदुर जी को युधिष्ठिर के महल में भेजा। राजा की आज्ञा से महातेजस्वी विदुर जी युधिष्ठिर के पास जाकर बोले, राजन महाराज धृतराष्ट्र वनवास की दीक्षा ले चुके हैं। आगामी कार्तिकी पूर्णिमा को वे वन की यात्रा करेंगे। इस समय तुमसे कुछ धन लेना चाहते हैं। उनका विचार है कि महात्मा भीष्म, द्रोण, सोमदत्त, वाल्लिक और अपने पुत्रों तथा मरे हुए सुहृदों का श्राद्ध करें और उनके निमित्त दान दें। तुम्हारी यदि सम्मति हो तो जयद्रथ का भी श्राद्ध करना चाहते हैं। विदुर जी की बात सुनकर महाराज युधिष्ठिर अर्जुन बहुत प्रसन्न हुए, उनकी सराहना करने लगे। परंतु समझ गए होंगे, परंतु भीमसेन के हृदय में अमिट क्रोध जमा हुआ था। अतः वे खड़े होकर युधिष्ठिर जी की बात का विरोध करने लगे। ये हमें स्वीकार नहीं है। अत्याचारियों का श्राद्ध यहां के धन से हो, भीमसेन इसे स्वीकार नहीं करता। अर्जुन बोले, भैया भीम, तुम दुर्योधन को क्यों देखते हो? राजा धृतराष्ट्र की ओर देखो, हमारे ताऊ हैं और वृद्ध पुरुष हैं, अब ये वनवास की दीक्षा ले चुके हैं, धृतराष्ट्र को आप पहले जैसा क्यों देखते हैं? जाने के पहले भी भीष्म और समस्त सुहृदों का श्राद्ध करना चाहते हैं तो करने दीजिए, इसमें अपने को तो पूरा सहयोग देना चाहिए। देखो भीमसेन जी, ये कितने सौभाग्य की बात है, राजा धृतराष्ट्र आज हम लोगों से दुर्योधन आदि के धन की याचना करते हैं श्राद्ध करने के लिए। समय का उलट फेर तो देखो, ये वही सभा है जिसमें भगवान कृष्ण ने 5 गांव मांगे थे, और इसी सभा में इन्हीं धृतराष्ट्र के सामने दुर्योधन ने कहा था, सूची का अग्रभाग भी नहीं दूंगा। आज अपने हाथ में सारा धन है तो हृदय खोल करके अपने को सारा धन समर्पित करना चाहिए। आज वे हमारे सामने हाथ फैला रहे हैं, कम बात है? थोड़ा क्रोध कम करो भीमसेन जी। जो संपूर्ण भूमंडल के राजा थे वे आज वन में जाना चाहते हैं, अतः आप इन्हें धन देने के सिवा और कोई विचार मन में मत लाओ। भूतकाल को छोड़ो, वर्तमान में क्या करना है ये सोचो, ताकि भविष्य में क्या होगा ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। उनकी याचना ठुकरा देने से बढ़कर अब हमारे लिए कोई कलंक की बात नहीं होगी। उन्हें धन न देने से हमें महान अधर्म भोगना पड़ेगा। भीमसेन, यही क्रोध तो दुर्योधन करता था, वही क्रोध यदि हम लोग करेंगे, हमारे में और दुर्योधन में क्या अंतर रहेगा? इसलिए आप राजा युधिष्ठिर के बर्ताव से शिक्षा ग्रहण करें। आहा, कितनी बढ़िया बात है, क्योंकि बड़ा भाई ईश्वर के समान होता है। आज युधिष्ठिर हमारे पिता के समान है, चाहे वो कैसी भी आज्ञा दें स्वीकार करो। अर्जुन की बात भीमसेन ने सुनी, ये बात और भी भाई सुन रहे थे। धर्मराज युधिष्ठिर ने बड़ी प्रशंसा की। तब भीमसेन ने फिर भी क्रोध भर करके कहा, अर्जुन, हम लोग स्वयं महात्मा भीष्म, राजा सोमदत्त, भूरिश्रवा, राजर्षि वाल्मीक, महात्मा द्रोणाचार्य तथा अन्य सभी सगे संबंधियों का श्राद्ध नहीं कर सकते क्या? क्या धृतराष्ट्र को ही अधिकार है? हम लोग मर थोड़े ही गए, हम लोग वन में थोड़े ही जा रहे हैं, वो एक दिन श्राद्ध कर देंगे, बाकी तो श्राद्ध अपने लोगों को ही करना है, तो इस काम में हम लोग क्यों नहीं आगे आए? हमारी माता कुंती कर्ण को पिंडदान देगी, राजा धृतराष्ट्र को इसके लिए धन देने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये उपर्युक्त महानुभाव का श्राद्ध न करें, मैं तो कहता हूं यह अपने हाथ से होना चाहिए, आपके हाथ से होना चाहिए। क्या तुम्हें इनके कर्तृत्वों की याद नहीं है? वे हमारे कुल में आग लगाने वाले, इनकी कितनी खोटी बुद्धि थी, इनके सामने कपट द्यूत हो रहा था और विदुर जी से बार बार पूछते थे कि इस दाव में हम लोगों ने कितना जीता है बताओ, ये याद है आपको? भीम की बातें सुनकर के युधिष्ठिर ने एक बार चुप्पी धारण की और फिर डांट करके कहा, भीमसेन अब चुप रहो, बीते हुए समय को इस प्रकार से वर्तमान में लाना तुम्हारे लिए शोभा नहीं देता है, मैं इसे अनुचित मानता हूं। अर्जुन ने कहा, भैया आप मेरे बड़े भाई, आप मेरे गुरु, आपसे बड़े युधिष्ठिर गुरु, वो आपके बड़े भैया, तो मैं आपसे क्या कहूं, आप मेरे पूजनीय हैं, आपके सामने कुछ कहने का साहस नहीं है, इतना ही कहना चाहता हूं। अब धृतराष्ट्र वन में जा रहे हैं, जाते जातों के साथ क्यों संबंध बिगाड़ो, वो धर्म के लिए पैसा ले रहे हैं, याचना कर रहे हैं। धृतराष्ट्र हमारे लिए सर्वथा सम्मान के योग्य है। सारी प्रजा के अंदर जब उन्होंने ये कह दिया कि दुर्योधन के कारण से मेरे बड़े अपराध हुए, और क्या सुनना चाहते हो? साधु स्वभाव वाले पुरुष दूसरों के अपराधों को याद नहीं करते, वे सदा उपकारों को याद किया करते हैं। महात्मा अर्जुन के ये वचन सुनकर के धर्मात्मा युधिष्ठिर ने विदुर जी से कहा, चाचा जी आप मेरी ओर से राजा धृतराष्ट्र से जाकर निवेदन कीजिए कि वे अपने पुत्रों का श्राद्ध करने के लिए जितना भी धन लेना चाहे मैं देने के लिए तैयार हूं। ये धन मैं अपने भंडार में से दूंगा, इसके लिए भीमसेन को दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। विदुर जी से ऐसा कहकर धर्मराज ने अर्जुन की बड़ी प्रशंसा की। तब भीमसेन कुछ संकुचित हो गए और अर्जुन की ओर कनखियों से देखने लगे। ये कनखियों से देखना कनखियों से देखने लगे। ये देख राजा युधिष्ठिर पुनः विदुर जी से कहने लगे, आप राजा धृतराष्ट्र से कहिएगा ना कि भीमसेन पर वनवास के दुखों का विशेष प्रभाव पड़ा है, इसलिए वे डाहवश जो भी कहते या करते हैं उसके ऊपर वे विचार न करें। मेरे और अर्जुन के भवन में जितनी संपत्ति है उसके मालिक महाराज धृतराष्ट्र हैं, वे अपनी इच्छा के अनुसार उसे खर्च करें, ब्राह्मणों को दान दें, चाहे जो कुछ करें। आज वे अपने पुत्रों सुहृदों के ऋण से मुक्त हो जाए, मेरा ये शरीर मेरा ये धन सब धृतराष्ट्र के अधीन है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। राजा युधिष्ठिर के इस प्रकार कहने पर बुद्धिमानों में श्रेष्ठ विदुर ने धृतराष्ट्र के पास जाकर कहा, महाराज मैंने युधिष्ठिर के यहां जाकर आपका संदेश कह सुनाया, उसे सुनकर उन्होंने आपकी बड़ी प्रशंसा की है। महातेजस्वी अर्जुन तो अपना घर संपत्ति प्राण तक आपकी सेवा में समर्पण करने को तैयार है। आपके पुत्र महाराज धृतराष्ट्र की भी यही स्थिति, आपके पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर की भी यही स्थिति है। वे अपना राज्य प्राण धन और जो कुछ उनके पास है सब आपको दे रहे हैं, परंतु परंतु में वही बात आएगी, परंतु महाबाहु भीमसेन ने पहले के सारे क्लेशों को याद करके बड़ी कठिनाई से सबके समझाने बुझाने पर आपकी आज्ञा बड़ी मुश्किल से स्वीकार की है। उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे मैं जहर का घूंट पी रहा हूं। धर्मात्मा युधिष्ठिर तथा अर्जुन ने उन्हें भलीभांति समझाया है, उनके हृदय में आपके प्रति आदर का भाव उत्पन्न किया है, और धर्मराज ने आपसे कहलवाया है कि भीमसेन पिछले बैर को याद करके कभी कभी आपके साथ अन्याय सा कर बैठते हैं, उसके लिए आप इन पर क्रोध मत कीजिएगा। भीमसेन के कटु बर्ताव के लिए मैं और अर्जुन दोनों आपसे बारंबार क्षमा याचना करते हैं। आप प्रसन्न हो, मेरे पास जो कुछ है उसके स्वामी आप हैं, आप जितना धन दान करना चाहते खुलकर करें, मेरे राज्य और प्राणों के भी आप ही अधीश्वर हैं, पुत्रों का श्राद्ध कीजिए, ब्राह्मणों को माफी जमीन दीजिए। युधिष्ठिर ने यह भी कहा कि महाराज धृतराष्ट्र मेरे यहां से नाना प्रकार के रत्न गौवे दास दासियां मंगाकर ब्राह्मणों को दान करें। उन्होंने मुझसे कहा, विदुर जी आप दीनों अंधों कंगालों के लिए भिन्न भिन्न स्थानों में प्रचुर अन्न रस और पीने योग्य पदार्थों से भरी हुई अनेकों धर्मशालाएं बनवाइए तथा गऊओं के पानी पीने के लिए पौंसले का निर्माण कीजिए। साथ ही भांति भांति के अन्य पुण्य कर्मों का भी अनुष्ठान कीजिए। इस प्रकार राजा युधिष्ठिर और अर्जुन ने मुझसे जो कुछ कहा है वो सब सुना दिया है, अब बताइए इसके बाद मैं आपकी क्या सेवा करूं। विदुर के कहने पर राजा धृतराष्ट्र ने पांडवों की बड़ी सराहना की, कार्तिक की पूर्णिमा पर बहुत बड़ा दान करने का निश्चय किया। वे युधिष्ठिर और अर्जुन के काम से बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने भीष्म आदि के श्राद्ध के लिए योग्य ब्राह्मणों तथा श्रेष्ठ ऋषियों को हजारों की संख्या में निमंत्रित किया तथा उनके लिए अन्न पान सवारी ओढ़ने के वस्त्र सोना मणि रत्न कंबल गांव खेत धन आभूषणों से विभूषित हाथी और घोड़े आदि देने की व्यवस्था करवाई। तत्पश्चात मरे हुए एक एक व्यक्ति का नाम लेकर सबके उद्देश्य से उपयुक्त वस्तुओं का दान किया। द्रोण भीष्म सोमदत्त वाहल्लिक राजा दुर्योधन तथा अन्य सभी पुत्रों का और जयद्रथ आदि सगे संबंधियों का नाम उच्चारण करके उन सब के निमित्त पृथक पृथक दान किया। युधिष्ठिर की सम्मति से उस श्राद्ध यज्ञ में बहुत से धन तथा अनेक प्रकार के रत्नों की दक्षिणा दी गई। धर्मराज की आज्ञा से हिसाब लगाने और लिखने वाले बहुतेरे कार्यकर्ता वहां निरंतर उपस्थित होकर धृतराष्ट्र से पूछते रहते थे, बताइए इन याचकों को क्या दिया जाए, आप जो आज्ञा देंगे सब सामग्री प्रस्तुत है, बस उनके मुंह से एक शब्द निकलना चाहिए उससे पहले पहले दान चला जाता था। बुद्धिमान युधिष्ठिर के आदेशानुसार 100 की जगह 1000, 1000 की जगह 10,000 का दान दिया गया। जिस प्रकार मेघ पानी की धारा बहाकर खेती को हरी भरी कर देता है, उसी प्रकार राजा धृतराष्ट्र ने धन की वर्षा से समस्त ब्राह्मणों को तृप्त कर दिया। तदनंतर सभी वर्ण के लोगों को भांति भांति के भोजन और पीने योग्य रस प्रदान करके संतुष्ट किया। इस प्रकार उन्होंने पुत्रों पौत्रों पितरों तथा अपना और गांधारी का भी जीवित श्राद्ध कर दिया। जीवित श्राद्ध भी होता है, आप बोला जीवित खर्च हुए, आपने साधवा में जीवित मेलो हुए। अनेकों प्रकार के दान देते देते जब थक गए तब उन्होंने उस दान यज्ञ को बंद किया। राजा धृतराष्ट्र का वह महान दान यज्ञ सब प्रकार पूर्ण हुआ, सामग्री खत्म नहीं हुई, देते देते वो खुद ही थक गए। उसमें लगातार 10 दिनों तक दान देकर वे पुत्र और पौत्रों के ऋण से मुक्त हो गए। तदनंतर 11वें दिन प्रातःकाल गांधारी सहित धृतराष्ट्र ने वन जाने की तैयारी करके पांडवों को बुलाया और सबका अभिनंदन किया। उस दिन कार्तिक की पूर्णिमा थी। उन्होंने वेद के पारंगत विद्वानों से यात्रा कालोचित इष्टि करवाकर वल्कल और मृगचर्म धारण किया और अग्निहोत्र को आगे करके वे राजमहल से बाहर निकले। फिर लाजा और भांति भांति के फूलों से उस घर की पूजा करके उन्होंने धन देकर भृत्यों का सत्कार किया। तत्पश्चात सबको विदा करके वे चले गए। उस समय राजा युधिष्ठिर हाथ जोड़े हुए कांपने लग गए, आंसुओं से गला भराया और जोर जोर से बालक के समान बिलख बिलख कर रोने लग गए। भीमसेन अर्जुन नकुल सहदेव विदुर श्रृंजय युयुत्सु कृपाचारी धौम्य और बहुत से ब्राह्मण भी आंसू बहाते हुए गदगद कंठ होकर पीछे पीछे चले। आगे आगे कुंती गांधारी का हाथ पकड़े चल रही थी। उनके पीछे आंखों में पट्टी बांधे गांधारी थी। गांधारी का हाथ कुंती के कंधे पर था और राजा धृतराष्ट्र गांधारी के कंधे पर हाथ रख के निश्चिंतता पूर्वक चले जा रहे थे। सुभद्रा, द्रौपदी, पहले द्रौपदी, सुभद्रा, चित्रांगदा एक नन्ना सा बालक लिए उत्तरा तथा गुरुकुल की अन्य स्त्रियां अपने बहुओं को साथ लिए राजा धृतराष्ट्र के साथ जा रही थी। उस समय दुख के आवेग से सब कुर्री की भांति उच्च स्वर से विलाप कर रही थी। उनके रोने की आवाज सुनकर चारों ओर से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों की स्त्रियां भी घर छोड़ छोड़ करके बाहर निकली आई। जिन रमणियों ने कभी बाहर आकर सूर्य और चंद्रमा तक को नहीं देखा था वे ही कौरवराज धृतराष्ट्र के वन में प्रस्थान करते समय शोक से व्याकुल होकर खुले मार्ग पर जा रही थी। तदनंतर राजा धृतराष्ट्र वर्धमान नामक द्वार से होते हुए हस्तिनापुर से बाहर निकले। वहां पहुंचकर उन्होंने बारंबार आग्रह करके अपने साथ आए हुए जन समूह को विदा किया। विदुर और संजय ने राजा के साथ वन में जाने का निश्चय कर लिया था, इसलिए वे दोनों नहीं लौटे। किंतु कृपाचार्य और महारथी युयुत्सु को धृतराष्ट्र के हाथों सौंप कर उनको लौटा दिया। पूर्वासियों के लौट जाने पर राजा युधिष्ठिर ने रेनिवास की स्त्रियों को साथ में लेकर धृतराष्ट्र की आज्ञा से लौटने का विचार किया और वन में जाती हुई अपनी मां कुंती से कहा, माताजी, आप अपनी बहुओं के साथ नगर को लौट जाइए, मैं महाराज के पीछे पीछे जा रहा हूं। ये धर्मात्मा नरेश तपस्या का निश्चय कर चुके हैं, इसलिए इन्हें वन में जाने दीजिए, आप महल की ओर चलिए। धर्मराज के इस प्रकार कहने पर कुंती के आंखों में आंसू भर आए, तो भी वे गांधारी का हाथ पकड़े चलती रही। जाते जाते उन्होंने युधिष्ठिर से कहा, पुत्र, तुम सहदेव की कभी उपेक्षा मत करना, ये मेरे और तुम्हारे परम भक्त हैं, संग्राम में कभी पीठ न दिखाने वाले तुम्हारे भाई कर्ण को सदा याद रखना, क्योंकि मेरी दुर्बुद्धि के कारण वह वीर युद्ध में मारा गया। बेटा, तुम धर्मात्मा हो, मुझ अभागिनी का हृदय निश्चय ही लोहे का बना हुआ है, तभी तो कर्ण को न देखकर मेरा हृदय सैकड़ों टुकड़े नहीं हो जाता। तुम अपने भाइयों के साथ उसके लिए जरूर दान पुण्य करना। दूसरी बात कहना चाहता हूं, मेरी बहू द्रौपदी का विशेष ध्यान रखना, द्रौपदी का सदा प्रिय करना और परमवीर भीमसेन कुछ भी कहे, क्रोध में कुछ भी कहे, तुम उसको पी जाना। भीमसेन हृदय का बहुत सीधा और भोला है, उसके मन में कभी किसी के प्रति कोई भी बात रहती नहीं है। वो मुंह फट है पर वो हृदय का बहुत सीधा है। अर्जुन, उसके ऊपर तो कृष्ण का वरद हस्त है, और नकुल, सहदेव का भाई, तुम्हारा छोटा भाई, विशेष ध्यान रखना। सब बातों की सार ये है, पुत्र, आज से कुरुकुल का भार तुम्हारे ही ऊपर है। अब मैं वन में जा रही हूं, गांधारी के साथ रहूंगी, और अपने इस सास ससुर के चरणों की सेवा में अपना जीवन लगा दूंगी। यदि सास ससुर चले गए तो फिर मैं भी जंगल में अकेली तपस्विनी होकर अपने शरीर को छोड़ दूंगी। कुंती ऐसा बोल रही थी। भाइयों सहित युधिष्ठिर नीचा किए हुए अश्रुधारा बह रहे थे। बहुत देर तक मौन रहकर युधिष्ठिर जी बोले, मां आपने अपने मन में क्या ठान लिया? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। गांधारी ने, धृतराष्ट्र ने व्यास जी से और मुझसे अनुमति मांगी है, आपने तो मुझसे अनुमति भी नहीं मांगी। हम लोगों पर कृपा करके आप लौट चलिए। पहले आपने ही विदुला के वचनों से हमें क्षत्रिय धर्म के पालन के लिए उत्साहित किया था। मां आपका पुत्र होने के नाते युद्ध से पहले तो वन में मैं जाना चाहता था। उस समय आपने मुझे क्षत्रिय धर्म की स्मृति दिलाई, युद्ध के लिए उत्साहित किया। पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के मुख से आपका विचार सुनकर मैंने राजाओं का संहार करके इस राज्य को हस्तगत किया। कहां आपकी वो बुद्धि और कहां आज ही आपका वन का विचार? हमें क्षत्रिय धर्म पर स्थित रहने का आदेश दिया और आप स्वयं अब क्षत्रिय धर्म को गिरना देखना चाहती हूं। भला हमको, अपनी बहू को, अपने इस राज्य को छोड़कर आप दुर्गम वन में जाओगे? हमारे पर कृपा कीजिए मां, आपने जीवन में सबसे ज्यादा क्लेश भोगा है, अब आप और कष्ट पाने योग्य नहीं है। अपने पुत्र के अश्रु भरे गदगद वचनों को सुनकर के कुंती के नेत्रों में आंसुओं की झड़ी लग गई, तो भी वे रुकी नहीं और आगे बढ़ती गई। तब भीमसेन जी ने कहा, माताजी, जब पुत्रों के जीते हुए इस राज्य को भोगने का अवसर आया और राजधर्म के पालन की सुविधा प्राप्त हुई, तो आप एकदम क्यों बदल गई? क्या कारण है हमें छोड़कर आप वन में चली जा रही हो? जब वन में ही रहना था तो बालक अवस्था में हम लोगों को और दुख शोक में डूबे हुए इन माद्री कुमारों को आप नगर में लेकर ही क्यों आए? क्योंकि हमारे पिता पांडु वन में ही तो मरे थे। आप भी वन में, तपोवन में रहते, हम भी आपके पास रहते और वनवासी जीवन व्यतीत करते। मां हम लोगों पर प्रसन्न होइए, बलपूर्वक एवं न्याय से प्राप्त हुई, कृष्ण की आज्ञा से मिली हुई इस युधिष्ठिर की राज लक्ष्मी का आप भी उपभोग कीजिए। यह सुनकर कुंती वनवास के निश्चय से विचलित नहीं हुई और अपने पुत्र भीमसेन के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा समय समय की अपनी बात होती है, अब मेरा वन में जाने का समय है। सास को इस प्रकार वनवास के लिए जाती देखकर द्रौपदी का मुंह उदास हो गया। द्रौपदी और सुभद्रा के साथ रोती हुई कुंती के पीछे पीछे जाने लगी। कुंती की बुद्धि बड़ी ऊंची थी, वे वनवास का निश्चय कर चुकी थी, इसलिए अपने रोते हुए पुत्रों की ओर बारंबार देखकर भी वो टस से मस नहीं हुई, आगे बढ़ती चली गई। पांडव भी अपने सेवकों और अंतपुर की स्त्रियों के साथ उनके पीछे पीछे जाने लगे। कुंती ने बड़ी सावधानी से अपने आंसू पोंछकर अपने पुत्रों से कही, मां बहो तुम्हारा कहना ठीक है, पूर्व काल में तुमने नाना प्रकार के कष्ट उठाए थे, इसलिए मैंने धर्म के लिए युद्ध के लिए उत्साहित किया था, तुम्हारा न्यायपूर्वक शासन था जिसको अन्याय से जुए में तुम्हारा राज्य छीना गया, तुम सुख से भ्रष्ट हो चुके, तुम्हारे ही बंधु बांधव तुम्हारा तिरस्कार करते, इसलिए मैंने तुम्हें युद्ध के लिए उत्साह प्रदान किया। पांडु की संतान किसी तरह नष्ट होने से बच जाए और तुम सब भाइयों के सुयश का नाश न होवे, इस उद्देश्य से मैंने युद्ध के लिए उकसाया था, उसमें मेरा व्यक्तिगत कोई स्वार्थ नहीं था। मैं अपने स्वामी महाराज पांडु के विशाल राज्य का सुख भोग चुकी हूं, बड़े बड़े दान और विधिवत सोमपान भी कर चुकी हूं, मैंने अपने लाभ के लिए श्री कृष्ण को प्रेरित कभी नहीं किया, विदुला के वचन सुनाकर जो उनके द्वारा तुम्हारे पास संदेश भेजा था वह तुम्हारी रक्षा के उद्देश्य से किया था पुत्र। अब मैं तपस्या के द्वारा अपने पति के पवित्र लोक में जाना चाहती हूं, मेरा जाने का यह भी उद्देश्य है कि पति जिस मार्ग से गए हैं वे भी तो वन में गए थे, इसलिए मैं अपने जीवन का अंत महलों में नहीं करना चाहती, अपने पति के अनुसार मैं भी वन में ही अपना जीवन समाप्त करना चाहती हूं। यह तो एक बहाना है, और ये बहाना कितना अच्छा है कि सास ससुर के समान मेरे धृतराष्ट्र और गांधारी, इनकी सेवा का अवसर और उसके साथ वनवास का सेवन बहुत अच्छा मौका है। तुम भीमसेन आदि के साथ लौट जाओ युधिष्ठिर, मैं अंतर मन से तुमको आशीर्वाद देती हूं, तुम्हारी बुद्धि ऐसे ही धर्म में लगी रहे, तुम्हारा हृदय इसी प्रकार अत्यंत उदार रहे। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय कुंती की बात सुनकर पांडव बहुत लज्जित हुए और उन्हें लौटाने में सफल न होकर राजा धृतराष्ट्र की प्रदक्षिणा और प्रणाम करके द्रौपदी के साथ नगर को लौट आए। तदनंतर धृतराष्ट्र ने गांधारी और विदुर का सहारा लेकर कहा, गांधारी युधिष्ठिर की माता कुंती को लौटा दो, युधिष्ठिर जैसा कह रहे थे वो बिल्कुल ठीक है, यह राज्य में रहकर बड़े बड़े दान और तप कर सकती है, कुंती बहू की सेवा शुश्रूषा से मैं बहुत संतुष्ट हूं, इसलिए तुम इसे घर लौट जाने की आज्ञा दो। राजा के ऐसा कहने पर गांधारी देवी ने कुंती से उनका संदेश सुना दिया और अपनी ओर से लौट जाने के लिए विशेष जोर दिया, किंतु धर्मपरायणा धर्ममाता सती कुंती देवी वनवास के लिए दृढ़ निश्चय कर चुकी थी, अतः गांधारी उन्हें किसी प्रकार वापिस नहीं लौटा सकी। कुरुकुल की स्त्रियां कुंती का दृढ़ निश्चय देखकर जानकर पांडवों को निराश लौटे देख फूट फूट कर रोने लगी। जब बहुओं के साथ समस्त पांडव लौट आए तो राजा धृतराष्ट्र वन की ओर चल दिए। उस समय पांडव अत्यंत दीन शोक मग्न हो रहे थे, उन्होंने वाहनों पर बैठकर स्त्रियों सहित नगर में प्रवेश किया। उस समय उन्होंने अपने बाएं हाथ पर माथा यूं नीचे कर रखा था, शोक में डूबे हुए आ रहे थे। उस दिन बालक वृद्ध स्त्रियों सहित सारा हस्तिनापुर नगर हर्ष और आनंद से रहित, उत्सव शून्य, उदास, मायूस होया हुआ था। किसी का भी किसी काम में कोई मन नहीं लग रहा था। सब पड़े रहना चाहते थे, बैठे रहना चाहते थे, कोई किसी को देखना सुनना नहीं चाहता। अंदर से सब टूट गए। कुंती के बिना बेचारे पांडवों की दशा तो बिना गाय के बछड़ों की सी हो जाती है। क्या इतना सौभाग्य है सज्जनों, अपनों को ये बातें पढ़ने को मिलती है, सुनने को मिलती है। राजा धृतराष्ट्र ने उस दिन बहुत दूर तक यात्रा करने के पश्चात गंगा के तट पर निवास किया। वहां के तपोवन में वेद वेत्ता ब्राह्मणों द्वारा विधि पूर्वक की हुई प्रकट की हुई आग यत्र तत्र प्रज्वलित हो रही थी। वृद्ध राजा धृतराष्ट्र ने भी अग्नि को प्रकट किया और उसकी विधिवत आराधना करके उसमें आहुति दी। फिर सूर्य देव को संध्या के समय अस्त होते देख उनका उपस्थान किया। इसके बाद विदुर और संजय ने राजा के लिए कुशों की शैया बिछाई, उनके पास ही गांधारी के लिए अलग से एक आसन लगा दिया। उत्तम व्रतों का पालन करने वाली कुंती भी गांधारी के निकट एक कुशासन के ऊपर सोई और उसमें उन्होंने बड़े सुख का अनुभव किया। किसने? कुंती ने। विदुर आदि भी राजा से उतनी दूर पर सोए जहां से उनकी आवाज आराम से सुनाई दे सके। यज्ञ करने वाले ब्राह्मण तथा राजा के साथ आए हुए अन्य विप्र यथा योग्य स्थान पर चले गए। उस तपोवन में मुख्य मुख्य ब्राह्मण स्वाध्याय करते थे और जहां तहां अग्निहोत्र की आग प्रज्वलित हो रही थी। इससे वह रात्रि उन लोगों को बड़ी आनंददायिनी जान पड़ी। रात बीत जाने के बाद प्रातःकाल उठे, सब लोगों ने पूर्वान्न काल की क्रिया पूरी की, विधिवत अग्निहोत्री करके सब उत्तर दिशा की ओर क्रम से आगे बढ़े। किसी ने भोजन नहीं किया, सब लोग उपवास का ही व्रत का पालन कर रहे थे। तदनंतर दिन बीतने पर विदुर जी के कहने से राजा धृतराष्ट्र ने पुण्यात्मा पुरुषों के रहने योग्य भागीरथी के पवित्र तट पर निवास किया, जहां वनवासी राजा एकत्रित होकर राजा से मिलने के लिए आए थे। उनसे घिरे हुए राजा धृतराष्ट्र ने अनेक प्रकार की बातें कर उनको प्रसन्न किया। ब्राह्मणों तथा उनके शिष्यों का विधिवत पूजन करके उन्हें विदा किया। तत्पश्चात सायंकाल में राजा तथा यशस्विनी गांधारी देवी ने गंगा जी के जल में प्रवेश करके विधिवत स्नान किया। विदुर जी तथा अन्य लोगों ने भी गंगा के भिन्न भिन्न घाटों पर डुबकी लगाकर संध्योपासना आदि समस्त शुभ कार्य किए। स्नान आदि कर लेने के पश्चात अपने बूढ़े ससुर धृतराष्ट्र और गांधारी देवी को कुंती देवी गंगा के किनारे ले आई। यहां यज्ञ कराने वाले ब्राह्मणों ने राजा के लिए एक वेदी तैयार की, जिस पर अग्नि स्थापना करके उन्हें विधिवत अग्निहोत्र किया। इस प्रकार नित्य कर्म से निवृत्त होकर राजा धृतराष्ट्र इंद्रिय संयम पूर्वक नियमों का पालन करते हुए अपने अनुयायियों सहित गंगा तट से चलकर कुरुक्षेत्र में जा पहुंचे। वहां एक आश्रम पर जाकर राजर्षि शतयूप से मिले। वे राजर्षि पहले केकय देश के राजा थे। अपने पुत्र को राज सिंहासन पर बैठाकर स्वयं वन में चले आए थे। धृतराष्ट्र उन्हें साथ लेकर महर्षि व्यास के आश्रम पर गए। वहां उन्होंने व्यास की विधिवत पूजा की। तत्पश्चात उनसे वनवास की दीक्षा लेकर वे शतयूप के आश्रम पर ही आकर रहने लगे। महामती राजा शतयूप ने व्यास जी की आज्ञा से धृतराष्ट्र को वन में रहने की पूर्ण विधि बतला दी। तब महामना धृतराष्ट्र स्वयं भी तप करने लगे और अपने अनुचरों को भी तपस्या में लगा दिया। गांधारी देवी भी कुंती के साथ वलकल और मृगछाला धारण करके धृतराष्ट्र के समान ही व्रत का पालन करने लगी। दोनों स्त्रियां इंद्रियों को अपने अधीन करके मन, वाणी, कर्म और नेत्रों के द्वारा कठोर तपस्या करने लगे। राजा धृतराष्ट्र के शरीर का मांस सूखता चला गया। वे अस्थि चर्मावशिष्ट होकर मस्तक पर जटा और शरीर पर मृगछाला तथा वलकल वस्त्र धारण किए महर्षियों के भांति तीव्र तपस्या में लग गए। हड्डियां रही केवल, इतने सूख गए वो। धर्म और अर्थ के ज्ञाता उत्तम बुद्धि वाले विदुर जी भी संजय सहित वलकल वस्त्र और चीर वस्त्र धारण करके गांधारी और धृतराष्ट्र की सेवा में लगे रहते तथा मन को वश में करके दुर्बल शरीर से घोर तपस्या करने लगे। वैशंपायन जी कहते हैं, तदनंतर राजा धृतराष्ट्र से मिलने के लिए देवर्षि नारद, पर्वत, महातपस्वी देवल, शिष्यों सहित महर्षि व्यास जी तथा अन्य अन्य सिद्ध महर्षि आए। परम धार्मिक राजर्षि सत्युग भी उनके साथ ही पधारे। कुंती देवी ने सबका स्वागत सत्कार किया और वे ऋषि भी कुंती की सेवा और तपस्या से बड़े संतुष्ट हुए। उन्होंने राजा धृतराष्ट्र का मन लगाने के लिए अनेकों धार्मिक कथाएं सुनाई। सब कुछ प्रत्यक्ष देखने वाले देवर्षि नारद ने किसी कथा के प्रसंग में यूं कहना प्रारंभ किया, हे महाराज धृतराष्ट्र, राजर्षि सत्युप के पितामह महाराज सहस्र चिंत्य कैकय देश के राजा थे। वे बड़े संपन्न थे और किसी से भी भय नहीं मानते थे। उन्होंने अपने परम धार्मिक ज्येष्ठ पुत्र को राज्य देकर तपस्या करने के लिए वन में प्रवेश किया और वहां तीव्र तपस्या का अनुष्ठान करके इंद्रलोक को प्राप्त किया। तपस्या से उनके सारे पाप भस्म हो गए। मैंने इंद्रलोक में जाते जाते उन परम प्रसन्न राजर्षि को अनेकों बार देखा है। इसी प्रकार भगदत्त के पितामह राजा शैलालय तपस्या के बल से इंद्रलोक गए। राजा प्रिशद्र इंद्र के समान पराक्रमी थे, उन्होंने भी तपस्या करके स्वर्ग को प्राप्त किया। मानधाता के पुत्र राजा पुरुकुत्स ने भी इसी वन में तपस्या करके बड़ी सिद्धि प्राप्त की। परम धार्मिक राजा सश्लोमा ने भी इसी तपोवन में सिद्धि प्राप्त की। तुम भी इस तपोवन में आकर तपस्या कर रहे हो, अतः महर्षि व्यास जी की कृपा से तुम्हें भी परम दुर्लभ और उत्तम गति प्राप्त होगी। तपस्या पूर्ण होने पर तुम अद्भुत तेज से संपन्न होकर गांधारी के साथ उपर्युक्त महात्माओं की गति को प्राप्त हो जाओगे। राजा पांडु स्वर्ग में इंद्र के पास रहकर सदा तुम्हें याद करते रहते हैं। वे अवश्य तुम्हारा कल्याण करेंगे। तुम्हारी और गांधारी की सेवा करने से तुम्हारी यशस्विनी वधु कुंती भी अपने पति के लोक में जाएगी। यह युधिष्ठिर की जननी है और युधिष्ठिर साक्षात धर्म के स्वरूप हैं, इसलिए कुंती की सदगति में तनिक भी संदेह नहीं है। अतः ये सब हम दिव्य दृष्टि से देखकर बता रहे हैं। विदुर जी महात्मा युधिष्ठिर के शरीर में प्रवेश करेंगे और संजय उन्हीं का चिंतन करने के कारण यहां से सीधे स्वर्ग में जाएंगे। यह सुनकर महात्मा राजा धृतराष्ट्र अपनी पत्नी के साथ बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने नारद जी के वचनों की प्रशंसा करके उनकी विशेष पूजा की। तदनंतर ब्राह्मणों ने अत्यंत प्रसन्न होकर नारद जी का बहुत आदर सत्कार किया। इसके बाद राजर्षि सत्युप ने नारद जी से कहा, भगवान आपकी बातें सुनकर यहां बैठे हुए सब लोगों की, कुरुराज धृतराष्ट्र की तथा मेरी भी तपस्या के विषय में श्रद्धा बढ़ गई है। इस समय मैं राजा धृतराष्ट्र के संबंध में आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। आप संपूर्ण वृत्तांतों को ठीक ठीक जानते हैं। मनुष्यों को जो तरह तरह की गति प्राप्त होती है, उसे आप अपनी दिव्य दृष्टि के द्वारा प्रत्यक्ष देखते हैं। आपने अनेकों राजाओं की इंद्रलोक प्राप्ति की बात कही, किंतु ये नहीं बताया कि ये राजा धृतराष्ट्र किस लोक को जाएंगे, कब जाएंगे, कौन से लोक में विराजमान होंगे। इस बात को सुनना चाहता हूं, आप इसका ठीक ठीक विवेचन करें। शतयुग के इस प्रकार प्रश्न करने पर दिव्य दृष्टि संपन्न महातेजस्वी देवर्षि नारद ने उस सभा में सबके मन को सुहाने वाली बात कही। सुनो हे राजर्षि, मैं एक बार घूमता घूमता इंद्रलोक में गया। वहां शचीपति इंद्र तथा राजा पांडु से मिला। वहां राजा धृतराष्ट्र की इस कठोर तपस्या के विषय में बातें चल रही थी। उस समय साक्षात इंद्र के मुख से मैंने ये सुना था कि अभी राजा धृतराष्ट्र की आयु 3 वर्ष बाकी है, उसके समाप्त होने पर ये गांधारी के साथ कुबेर के लोक को जाएंगे और वहां राजाओं के राजा कुबेर से सम्मानित होकर एक विमान में बैठकर देव गंधर्व और राक्षसों के लोकों में स्वेच्छानुसार विचरण करेंगे। तपस्या के द्वारा इनका सारा पाप जब भस्म हो जाएगा तब ये आगे के लोक में जाएंगे। यह देवताओं का गुप्त विचार है, हमको अभी नहीं बताना चाहिए था, परंतु आप लोगों पर प्रेम होने के कारण मैंने तो इसे प्रकट कर दिया है। आप लोग वेद के धनी हैं और तपस्या से निष्पाप हैं, अतः आपके सामने इस रहस्य को प्रकट करने में कोई हर्ज भी नहीं है। देवर्षि के मधुर वचन सुनकर वे सब लोग बहुत प्रसन्न हुए और राजा धृतराष्ट्र को भी इससे बड़ा हर्ष हुआ। इस प्रकार वे मनीषी महर्षिगण अपनी कथाओं से धृतराष्ट्र को संतुष्ट करके सिद्ध गति का आश्रय लेकर इच्छानुसार विभिन्न विभिन्न स्थानों को चले गए। अब इधर पांडवों की क्या दशा होती है वो अलग से प्रसंग चलेगा।
नारायण नारायण नारायण
श्रीमन नारायण
नारायण
श्रीमन नारायण
नारायण
श्रीमन नारायण
नारायण
श्रीमन नारायण
नारायण
श्रीमन नारायण
नारायण
श्रीमन नारायण
नारायण
श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण
नारायण नारायण
श्रीमन नारायण
नारायण
श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण
नारायण
श्रीमन
नारायण
श्रीमन नारायण
नारायण
श्रीमन नारायण
नारायण
श्रीमन नारायण
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 श्रीमन
नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 राम 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 मोर मुकुटवंशी वाले की जय अनंत कोटि संत महात्माओं की जय अनंत श्री हरि रामदास जी महाराज की जय भक्त वत्सल भगवान की जय नाम महाराज की जय।